أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. الہی انتقن بالغدا والحمد التقوى. ہمارے آج کے درس کا عنوان بڑا مزیدار سا ہے اور اس میں صرف میرے بولنے کی جگہ نہیں ہے, ہم سب پارٹیسپینٹس کو دعوت دیتے ہیں, وہ اس دال میں تڑکا ڈال سکتے ہیں. یعنی اس میں آخر میں آپ لوگوں کو رائے دینے کے لیے کچھ منٹس دوں گی انشاءاللہ. کچھ منٹس کے اس لیے مینشن نہیں کر رہی, یہ نہ میں خود ہی موضوع کو مکمل نہ کر پاؤں اس ٹائم کے فریم میں, تو پھر وہ میرے منٹس میں 10 کہہ دوں اور آخر میں 6 رہ جائیں, اس لیے کچھ منٹس تک ہی ہم باقی رہیں گے. ہمارا آج کا موضوع ہے غیر اسلامی فیشن. انٹرسٹنگ ہے, مجھے کل ملا تو میں نے کہا بڑے عرصے کے بعد, ورنہ مужے اکثر بڑے بور بور مسائل دے دیے جاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے خیر محنت تو اس کے لیے بھی کرنی پڑی, فقہی اعتبار سے بھی اور روایات میں بعض مخصوص اسٹائل آف ڈریس کی, ڈریسنگ کی مذمت کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی جن کی روایات میں مذمت ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی فقہی اعتبار سے حرمت ہے. حرمت یعنی فقہا نے اس طرح کی ڈریسنگ کو حرام قرار دیا ہے. اور میں نے اس کے دو حصے بھی کیے ہیں آج کی گفتگو کے, ایک وہ غیر اسلامی فیشن جو بے پردہ خواتین کرتی ہیں, اور ایک وہ غیر اسلامی فیشن جو ہمارا بظاہر دیندار متدین حرام حلال کو سمجھنے والا, مدرسوں اور مجلسوں میں جانے والا اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے سیو کرنے والا طبقہ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم غیر اسلامی فیشن کی طرف جائیں اور آپ کے ساتھ کچھ چیزوں کو شیئر کریں, میں نے ایک لسٹ سی بنائی ہے. پہلے مجھے لگ رہا تھا اس لسٹ میں 3-4 چیزیں آئیں گی, تو لسٹ جو ہے وہ لسی کی طرح بڑھتی چلی جا رہی تھی, بہت کچھ آ گیا اور بہت کچھ شاید بہتوں کو ناگوار بھی گزرے. اچھے مزیدار وہ فیڈ بیک کمنٹس ہوتے ہیں جو جیسے درس نیٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے نا, اس کے بعد جو امت آپ کو واٹس ایپ پر بتاتی ہے کہ آپ نے کیا پڑھا اور کسی اچھا لگا اور کسی اچھا نہیں لگا. اور ہمیں کون سی ٹینشن ہے, ہماری وما علینا الا البلاغ, ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے, پہنچا کر چپ چاپ یہاں سے نکل جاتے ہیں. سب سے پہلے زینت کا بیسک کانسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں ہو, تو اس سے پہلے جب ہم نے حجاب کی بات کی تھی اور قرآن کی سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 31 کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں خداوند عز و جل مردوں سے مخاطب ہے. آیت نمبر 30 میں کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں, وہ مردوں سے مخاطب ہے. پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ صاحبان ایمان مردوں سے کہہ دو. 31 میں ایک اگلی آیت میں پروردگار کہتا ہے قل للمؤمنات, ہمارے استاد تفسیر میں کہا کرتے تھے کہ خدا اس سے پہلے کہ عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے, مرد سے کہتا ہے اس سے پہلے اپنی نگاہوں کو جھکاؤ, غضوا ابصارکم, نیچے دیکھو, تم نہ دیکھو نہ وہ جو کیا ہے, وہ بسوں کے پیچھے شیر بھی لگا ہوتا ہے کہ آنکھ کا قصور ہوتا ہے بھگتنا دل کو پڑتا ہے, یہ سارے سلسلے شروع ہی ایک نگاہ سے ہوتے ہیں. بیچارہ نہ ہیر کو رانجھا دیکھتا, نہ وہ لیلا کو مجنو دیکھتا, نہ اتنی مصیبت تاریخ انسانیت پر آتی, نہ ایسے محاورے بنائے جاتے. سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 31 میں پروردگار زینت کو دو جگہ پر مینشن کرتا ہے. میں پھر سے آپ سے بہت پیار سے کہوں گی اس آیت کو گھر جا کے پڑھیے گا, میں اس کو سرسری سا ٹچ کروں گی, میرا موضوع اس آیت کی تفسیر بیان کرنا نہیں ہے. اس آیت کے حوالے سے اچھی انفارمیشن شیخ مرتضیٰ مطہری کی کتاب حجاب فلسفہ, فلسفہ حجاب, اور اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے عورت پردے کی آغوش میں, اور ترجمہ ہوئے بھی 35 سال گزر گئے, نئی کتاب نہیں, شیخ مرتضیٰ کی شہادت کو بھی 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا, اچھی معلومات, اچھا تفسیر کا پوائنٹ آف ویو شیخ مرتضیٰ مطہری نے ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آرٹیکلز جو ہیں وہ اسکالرز نے لکھے ہیں اس حجاب کے حوالے سے. پروردگار ایک مقام پر کہتا ہے کہ اسی آیت میں آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منہ. پھر پروردگار کہتا ہے لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او جلدی سے آیا تو آخر میں جا کر فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو حجاب کے حوالے سے پہلی گفتگو میں مینشن کیا تھا, اس میں 12 محرموں کی فہرست بیان کی ہے. البتہ آخری محرم کو فقہا نے محرم ایکسیپٹ نہیں کیا. قرآن کی سائد میں کہ گھر میں وہ کام کرنے والے ملازمین جو بہت بوڑھے ہیں, جن کو عورتوں کی رغبت نہیں رہی. تو ہماری ایک بہن نے تفسیر کی کلاس کے بعد جو ہے وہ گھر میں جو ڈرائیور تھا, اور ان کے پاس وہ ذرا زیادہ صاحب حیثیت تھی, صرف ڈرائیور نہیں تھا, انہوں نے گھر میں ایک مرد ملازم بھی رکھا تھا, دونوں سے پردہ چھوڑ دیا. تو میں نے ایک دفعہ ایسے دیکھا کہ بغیر موضوع کے جاری, میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہتے وہ تفسیر کی کلاس میں کہا تھا محرموں کی فہرست ہے شاید میں. میں نے کہا یہ تو دیکھتی کہ فقی اس لسٹ میں سے کس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. قرآن کی آیت اور آئمہ اطہار کی روایت سے فتویٰ خط کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح سے میں اور آپ قرآن کو اور سنت کو یا روایات کو پڑھ کر فقی نہیں بن سکتے. کام فقہا کا ہے, فقہا پر چھوڑ دیں. پروردگار پہلے مرحلے پر کہتے ہیں لا یبدینا زینتہن الا ما ظہر منہا, اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو. زینت کو آرائش, خوبصورتی, زیبائش, کتنی گاڑی ہوتی ہے نا, مرزا غالب کی روح کو خوش ہو گئے ہوں گے کہ کسی نے آج ان کے مزاج کر دو بولی. اور اگر میں آسان الفاظ میں اور عوامی زبان میں کہنا چاہوں تو فیشن. زینت کو آپ میں سے کوئی ایکسپلین کرے ود ان 30 سیکنڈ. زینت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اردو تین گاڑی اردو کے الفاظ بتائے, آرائش, زیبائش اور افیکشن کا باعث بنے. ایسا زینت کی پھر آگے بہت ساری, مثلاً زینت ایک چہرے کے بعد میں زینت کا فقہا کا مسئلہ آتا ہے. چہرے میں سے کچھ کم کرنا یا کچھ بڑھانا, کچھ ایڈیشنلی, ٹھیک ہے. ایڈیشنلی میں مثلاً آپ وہ بیس جو لگاتے دلہن, آپ نے دیکھا یوں کرتی ہے تو الگ سے, ہاں آدھا حصہ دھو دے, جیسے وہ ڈب کے اشتہار میں آتا نا, آدھا حصہ ڈب سے دھویا اور آدھا حصہ کسی دوسرے سوپ سے. تو بہرحال آپ دیکھیں بھی درد کی تیاری کے لیے ڈب تک جانا پڑ گیا. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. لیکن اور کمی, یہ جو ہم آئی بروز بنواتے ہیں, اوبیسلی وہ ہمارے چہرے پر کچھ لگاتی نہیں ہے سلون والی, وہ ہمارے چہرے سے اسی طرح سے اپر لپس, اسی طرح سے مثلاً جو ہاٹ ویکس کروایا جاتا ہے فیس کا, اس میں اوبیسلی وہ آپ کی کھال کو کھینچ رہی ہوتی ہے. ہم کھال کھینچنے کے ساتھ تو پیسے بھی دیتے ہیں اور چپ چاپ سہتے بھی ہیں. اتنا صبر ہم گھر میں دکھانے لگ جائیں تو ہم بہشتی خواتین میں شمار ہو جائے ہمارا. چپ چاپ درد کو سہ لیتی بیٹھی ہوتی ہیں, وہ پیڈیکیور کے نام پر کھال ادھیڑ رہی ہے, ادھیڑ رہی ہے تو ادھیڑنے دو. لیکن بہرحال زینت کے حوالے سے پروردگار کہتے ہیں زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گے سوائے ان کے جو خود بخود ہو جائے. یہاں فقہا کے بہت ہی اختلافی قسم کے نظریات ہیں, مجھے فقہا کے اختلافات کی طرف جانے ہی نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی نے زینت کے بعد میں تھوڑا سا بات جو میں ہاتھ ہلکا رکھا ہے. فقہ المغتربین میں آغا کی ایک کتاب ہے مغربی ممالک میں رہنے والے مومنین کے لیے, البتہ اس میں کچھ مسئلے کامن ہیں, سوال کیے ہوئے ہیں, آغا نے جواب دیے ہوئے ہیں. مثلا چوڑی یا بریسلیٹ, یہ جو فرض کرے ابھی میں نے ایک ایک پہنی ہوئی اتفاق ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا ہے آپ نے, یہ میرا اندر ہے. میں بہرحال خالصتاً ابتدا سے آغا سیستانی کی تقلید بھی نہیں ہوں, مجھے اپنا مرجع فالو کرنا ہے اوبیسلی. اگر میں آغا سیستانی کی تقلید میں تو میں آج کن کے اوپر پہن لوں تو کہ اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی صرف مقام معظم رہبری امام راحل مرحوم آیت اللہ کوئی آل اللہ مقامہ ان بزرگواروں کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ دوسری چیز جس میں آغا نے تھوڑی سی لینینسی دکھائی ہے وہ اکتحال, سرما لگانا, صرف سرما, آئی لائنر نہیں, مسکارا نہیں, اللے نہیں, تللے نہیں, سیدھا سیدھا سرما. وہ جو ہماری امیاں ایک سائڈ پر 4 سلائیاں اور ایک سائڈ پر بچپن میں 3 سلائیاں لگاتی تھی, وہ خود ہی لگاتی تھی, ہم تو لگوا لیں. جیسے ہی شعور آیا ہم نے سرمے کو چھوڑ دیا اور پھر ہم دوسرے کاموں کی طرف پڑ گئے. اکتحال, اس میں بھی 3 شرطیں ہیں آغا کی, عورت کو حرام میں ڈالنے کا کسی کو قصد نہ ہو. یعنی یہ چیز میں آگے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمارا ارادہ خدا خاص, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, ہمارے پنجابی کہتے ہیں سات چوروں کی خاک, لیکن اگر ہمارا قصد ہی کسی کو حرام میں مبتلا کرنا, اگر ایسا ہے یا کسی مفسدے کا ڈر ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے سمپل سی آنکھیں ہوتی ہیں, اچھی اچھی سی, اور دوست انہیں کہتے ہیں روئی روئی سی آنکھیں, اور ذرا سا وہ سرما لگا لیتی ہیں تو وہ آنکھیں 4 چاند نکل آتے ہیں, عجیب سی ہو جاتی ہیں. حتیٰ سمپل سرما وہی 3 اور 4 سرائیوں والا بھی ان کی آنکھوں کو رونق بخش دیتا ہے. ممکن ہے ان کی آنکھوں کی یہی کشش کسی نامحرم کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائے. آپ کو وہ روایت تو یاد ہوگی جو میں نے مولانا کائنات کے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ مولانا نے کہا میں سلام نہیں کرتا, तुम जवाब दो और मैं किसी की आवाज को सुन के गुनाह में मुब्तला हो जाऊँ। अब ये जो इतना था कुछ लगा लिया जाए उसके ऊपर वो एक अच्छा वाला हिजाब कर लिया जाए, वो जिसमें से सिर्फ आंखें नजर आते और सामने वाला सिर्फ आंखें देखता रह जाए और गाड़ी को दीवार में ठोक दे, ऐसा सुरमा लगाने की इजाजत फुकहा ने नहीं दी। खुलासा, अब जीनत के हवाले से फिर दूसरी जगह पर जब परवरदिगार इसी सूरह नूर के आयत नंबर 31 में कहता है कि जीनतों को जाहिर नहीं करेंगे सिवाय सबसे पहली कैटेगरी जिसके ऊपर जीनत जाहिर करने की अथॉरिटी है वो शौहर। मुझे ये जुमला बाजू का बार बार दोहराना पड़ता है कि दीनदार औरत का सबसे बड़ा इशू यह है कि वो ऑलमोस्ट घर में उजलू रुलिए में रहती है। बल्कि मैंने एक दफा एक और मदरसे में कभी जाती हूँ, रेगुलर में कहीं कमी जाती हूँ, मेरी थोड़ी कोताही कह रहे हैं, हजारामी कह रहे हैं, लेकिन उस मदरसे में मैंने मेंशन किया, मैंने कहा मैंने देखा दीनदार लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है पता नहीं क्यों, वो पॉजिटिव और खुश नजर नहीं आते अक्सर, अब अंजाम ऐसे बैठे थी शादी में भी। अरे जब पूरा अच्छा हिजाब है आप थोड़ा अच्छा पहन के आप भी चार बूंदे लटका दे हम भी आपको देख ले, उनसे सीखे वो जो पठान ट्रक ड्राइवर होते हैं कैसे उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर कितना कुछ लटकाया होता है। बात खवातीन में खैर ड्रेसिंग ऐसी ही करती हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसे खुदा कहते हैं अपनी जीनतों को जाहिर मत करो सिवाय इसके वो शौहर है। अगर अली अकबर मजाही का दर्श अखलाक पढ़ रही थी, इसे डॉक्टर नासिर रफी ने अपनी किताब में नुक्तों में बयान किया है, कहा दो दोस्त शादी में शरीक थे, शादी जैसे ही खत्म हुई तो एक फ्रेंड ने कहा चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते, कहा नहीं मुझे आज घर जल्दी जाना है, कहा क्यों, कहा आज मेरी बीवी ने अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर शक्ल निकाली है इससे पहले कि वापस पिछले हुलिये में आ जाए मैं उसे देखूं। ये हमारे दीनदार माशरे की ग्राउंड रियलिटी है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अब इस जीनत के हवाले से जिसे खुदा ने सिवाय इन 10-11 गिरोहों के हर किसी पर जाहिर करने से मना किया, इसकी कैटेगरी को मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती हूँ, आप बताइएगा कि आपने मेरी बात को किस हद तक एक्सेप्ट किया है। दीनदार अफराद की वो फैशन के हवाले से यानी गैर इस्लामी फैशन, पहली बात तो एक चीज फॉर्मूला दिमाग में बिठा दे, दीन नहीं चाहता आप नामहरम के सामने खूबसूरत लगे। जब मैंने ये सोच ले ली, इसे अडॉप्ट कर लिया, इसे हजम कर लिया, फिर मुझे जो कुछ करना है वो मैं अपनी चार दीवारी में करूँ। और उधर से दीन ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि जीनत मत करो, दीन ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि जीनत मत करो। खुदा दीन में 5 मरतबा प्रैक्टिस करवाता है, नमाज पे खड़ी हो रही हो अगर गर्दन में जेवर हो तुम्हारी, नमाज पे खड़ी हो रही हो इत्र लगाया हो, नमाज पे खड़ी हो रही हो कंघा किया हो, आपको सोचे उधर से इतना एम्फेसाइज है जीनत पर और इधर से है कि नामहरम के सामने अपने आप को जीनत अपनी जीनतों को जाहिर ना होने दो। अल्हम्दुलिल्लाह घरों की चार दीवारी में अगर आपका जो दिल चाहता है जैसे अंदाज से दिल चाहता है पहने। सबसे पहला गैर इस्लामी फैशन, मैंने लिस्ट अपने हिसाब से बनाई है, आप अपने हिसाब से लिस्ट बना लीजिएगा। हमने जब दीन को एक्सेप्ट किया, देखिए मैंने अब पहली वो कैटेगरी है जो दीनदार है और फैशन कर रही है, आपने देखा है अभी मैंने सर्च किया गूगल पर हिजाब की वैरायटीज पर, बाकायदा बड़े कलेक्शन हैं अबाया की वैरायटी पर और स्कार्फ की वैरायटी पर, और बाकायदा यूट्यूब पर एक क्लिप है मैंने पिछली दफा भी शेयर किया था कि अगर आपके दुपट्टे और श्याला में 4 शेड्स हैं तो ऐसे 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 तहे लगाएं कि वो चारों शेड्स आपके चेहरे पर उनका अक्स पड़ रहा हो। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई, मैंने कहा बंदा इसी काम में लगा रहे, घर जाने से निकलने से पहले इंसान घर समेट कर सुगड़ औरतें निकलती हैं, वापसी में कभी दरवाजे पर आपको मेहमान भी मिल जाते हैं अगर इंसान इन्हीं कामों में लगा रहेगा। अच्छा ये काम करके हम कहाँ जाएंगे, बाहर निकल रहे हैं तो फिर इसके ऊपर एक और बुरका पहना जाए, अगर हमें ऐसा कुछ करने का शौक है तो फिर इसके ऊपर एक और बुरका पहना जाए, फिर उसको ढांप लिया जाए तो फिर पहनने वाले को मजा नहीं आएगा। सबसे पहली चीज जो मैंने इस फेहरिस्त में लिखी है वो है ऊंट की कोहान जैसे कैचर्स, ये हम पहले भी शेयर कर चुके हैं जीनत के बाद में, उल्टा बड़ा सा कैचर, बड़े बड़े से कैचर, बड़े बड़े से अनियंस, आप सामने वाले को क्या शो करना चाहती है। मुझे लगता है ये बड़ा कैचर किसी ऐसी एहसास कमतरी की मारी हुई खातून ने इन्वेंट किया होगा जिसके बाल जैसे वो डॉक्टर आदिल हुसैन जैदी साहब ने मिसाल दी ना कि बुढ़ापे में वही बाल गधे की दुम लगते हैं, उस टाइप के बाल होंगे, बाल थोड़े से रह गए होंगे, उन्होंने बड़ा सा कैचर लगाकर दिल को तसल्ली दी होगी उनके पीछे बड़ा सा जूड़ा है, उनकी चोटी झूल रही है, मेरे पास तो बाल नहीं है चलो यहाँ पर एक बड़ा सा कैचर लगा लेती हूँ, देखने वाले को लगता है पीछे पता नहीं कितने बालों का गुच्छा है। और बाहर में निकलती है वो जाली के धागे, जब ऐसी खवातीन ईरान और इराक में वुज़ू खाने के लिए जैसे काम उतारती ना पीछे से थोड़े से बाल निकल आ जाते हैं और उसके ऊपर बड़ा सा कैचर, बहरहाल जीनत के बाद में है। यानी मेरे जहन में पहले ऐसा था कि ये क्यों, हमारे उस्ताद से मैंने पूछा कि ये पहनना जायज है, कहने के नहीं। मैंने कहा क्यों आगा, तो कहने लगे इसलिए कि ये जीनत के बाद में जाता है। मैंने कहा मेरे जहन में आया था कि इसको अगर हम कॉलम बनाते हैं जब हम अपने पास किसी चीज के हराम और हलाल होने के, तो जरूर तवज्जो के बाद में जाए, कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं, हिजाब की शराइत में एक जैसी ना कि वो चीज जरूर तवज्जो करने वाली ना हो। बाजू के जब नए नए चले थे, अब तो खैर बीमारी की तरह आम हो गए हैं, लेकिन जब नए नए चले थे तो इंसान देखकर थोड़ी देर के लिए ठिठक जाता था। तो इस तरह की चीज अब उन्होंने बच्चियों के लिए भी ऐसे कैचर्स बना दिए ताकि वो शुरू से आदत पड़ जाए, बड़ा सा पीछे उसने कुछ लटका कर फिरना है। और बाहर हाल ये एक ऐसी चीज है, बाद जगह पर उन्होंने रिवायात भी लिख कर लगाई हुई है, सीरिया वालों ने, इराक वालों ने, वो तफ्तीश में जाए तो एक बड़ी सी आंटी जी दिखाई हुई है, ऊंट की कुहान दिखाई हुई है, जितनी देर में वो आपकी तफ्तीश करते हैं आप उसको देखकर डरती रहती हैं, और नीचे लिखा हुआ ऐसी औरतों की नमाज कबूल नहीं है। वल्लाह आलम, रिवायत से फतवा खस करना मेरा और आपका काम नहीं है। जब एक दफा फकीर ने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। जिस जमाने में मिर्ज़ा शिराज़ी अल्लाह मकामहू ने तहरीम तम्बाकू का हुक्म दिया था, और एक फतवा सामर्रा में बैठे हुए उस फकीर ने दिया था कि आज से हर तरह का तंबाकू का इस्तेमाल फी हुक्म मुहारबत इमाम ज़माना अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, दिया था। यानी आज से तंबाकू का हर तरह का इस्तेमाल ऐसे है जैसे आप इमाम ज़माना के साथ जंग में दाखिल हो जाए। कहते हैं शाहे ईरान के घर में जब शाहे ईरान सुबह उठा तो उसे उठते ही हुक्का भी नहीं याद थी, हुक्का शीशा, आजकल तो फ्लेवर शीशा बार थी। पिछले दिनों मैंने सुना रेंजर से कराची में सफाइयां की हैं और रेड मारकर शीशा बार को बंद करा। खवातीन मुतदय्यन मुहज्जब अच्छी खवातीन, गर्भ में ये बीमारी जो निकलती है ना, हम पाकिस्तान में कसम खाई हुई हर बीमारी वहां से अखलाक की जरूर लेंगे, ये कैजेंट भी वहीं से निकले थे। और ये अब ये शीशा बार का इशू भी हमारे दरमियान राइज होता जा रहा है, लोग घरों में शीशा पार्टियां रखने लग गए हैं। अच्छा अब ये उन्हें उस बेचारे को उसका आदत थी, सुबह निहार में लोग बैठ टी पीते हैं, वो बैठ तंबाकू पीता था, उसने घर के मुलाजिमों से कहना शुरू किया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सबने आकर बेगम से शाही महल के अपने कमरे में आकर बीवी से कहा कि मेरे लिए फटाफट वो हुक्का बना कर ले आओ, तो कहेंगे नहीं बनाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे फकीर ने मुझे रात को टेलीग्राम के जरिए पता चला पूरे ईरान में उनका फतवा स्प्रेड हो रहा है कि उन्होंने कहा हर तरह से तंबाकू का इस्तेमाल जो है वो इमाम ज़माना के साथ जंग का हुक्म रखता है और मैं नहीं करना चाहती। शाह ईरान ने उस वक्त जो भी था कोई काजार का बादशाह था, खानदान काजारिया का, उसने बीवी से कहा तुम मेरी बीवी हो या उसकी, यानी बीवी तुम मेरी हो, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, फकीर को छोड़ो। कहा वो मेरा मर्जी है, अगर वो मुझे आज फिर तुमसे तलाक लेकर चली जाऊंगी। तो ऐसा ऐसी औरतें भी बहरहाल तारीख में गुजरी हैं, लेकिन ऐसी खवातीन भी हैं जिन्हें चार दीवारी के अंदर रहकर सारे काम करने हैं। दूसरी चीज काफ की पिन, एक काफ की सीधी सीधी पिन आती है, एक सेफ्टी पिन, नीली काली पीली टाइप की आपने लगा ली, एक आती है जिनमें से कुछ लटक रहा होता है, एक आती है जिनमें से फिर एक दूसरी कोई चीज निकल रही होती है। एक दो हम इस मदरसे में किसी प्राइवेट ट्यूशन में ऐसी किसी बच्ची के गले क्या लग गई, उसकी पिनों ने मुझे चुप चुप कर दिया कर दी, लेकिन आपने देखा है यहाँ लगाई है, बड़ा सा एक ब्रोच यहाँ पर चमक रहा है, क्या शो करना चाहती है ये बच्ची या ये मोमिना या मेरी वालदा की उम्र की कोई साहिब उम्र खातून, क्या शो करना चाहती है? मैंने कहा था आज के दर्शन तो आप लोग भी बोलेंगे क्या चाहती है? नहीं मैं अच्छा से अच्छा लगना देखेगा किसी से, आप लट निकाल कर बैठी होंगी डीडी करके आप में से क्यों, हम बताना चाहते हैं कि हम महंगी पिन अफोर्ड कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है औरतों के लाशों में, कल मैंने किसी को व्हाट्सएप पर उन्हें तस्वीरें दिखाई, कहा ये पहन सकती हूँ मिक्स गैदरिंग है, तो मैंने कहा ये तो जल्द तवज्जो आम है, तो कह रही अच्छा आगे जो मदरसा टीचर थी मुझे कहती है अम्मा भी नियमत है रब्बे का फहदिस, कुरान कहता अपने रब की नियमतों को जाहिर करो। मैंने कहा औरतों की चार दीवारी में जाहिर करो, लेडीज गैदरिंग में जाहिर करो। तो कहने कैसे कैसे पता चलेगा, लोग तो हमें गरीब समझेंगे। मैं कहा समझते तो वॉट क्या गरीब समझ के राशन महंगे लग जाएंगे आपके घर में? नहीं ना, रब ऊपर बैठा है, पालने वाला ऊपर बैठे, इन लोगों की टेंशन लेती है। हम सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग आखिर में सिर्फ इतना कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, सारा कुछ यही था। और लोगों ने अच्छा बड़ी कोई कर्टेसी दिखा देता तो कहते हैं अच्छा मरहूमों का नाम बता दे नमाज वहशत पढ़ देंगे, इससे ज्यादा कोई टेंशन आपके ख्याल में हमारा कितने कोई जानदारों कब्रिस्तान आकर बैठ जाएगा, अंदर डर तो नहीं रहेगा? नहीं, कोई नहीं अंदर आने वाला नहीं है। औरतें तो कब्रिस्तान जाती ही कहां जाती है, तो उनको वापस जाने की बहुत जल्दी होती है। ठीक, लेकिन भारत काफ की पिन आपने, आप में से बात का अंदाजा होगा खूबसूरत लगने के लिए। मेरा एक और व्यू भी है, हम ये चाहते हैं कि हम मसल ये बात ढाई सौ की भी आती है, 250-300 आप इतने बतूता के मॉल में चले जाए, इतनी वैरायटी है, लमान अल हफीज बस लगाकर बंदा बड़े बड़े से यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लगाकर खवातीन फिरती हैं। यानी मेरे अंदर कोई खुदा रहा था, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई कम्प्लेक्स है? मैं चाहती हूँ कि मेरी चादर का कपड़ा सबसे महंगा हो, मेरी शैला जो ये शैलाए और स्कार्फ होते हैं इसके ऊपर इतना कुछ लटका होगा, जूझने की चादर पर इतना कुछ लटका होगा? नहीं होता। क्या शो करना चाहती हूँ? सिर्फ दो व्यूज निकलते हैं माहरीन नफ्सियात के मुताबिक। कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, मैंने उनसे पूछा ये काम क्यों करते हैं, कहा बाद हम अपना एहसास कमजोरी कंपनसेट कर रहे होते हैं। और ऐसी सेंसिटिविटी, औरत हूँ, एक जनाना बात कहूँ बुरा लगेगी आपको, लग जाए मैक्सिमम क्या करेंगे आप लोग? मैनेजमेंट से कहेंगे दोबारा जहरा यासूफी को बुलाए, नहीं तो मुझे तो कोई फर्ज ही पड़ेगा, मैं कहूँगी शुमारों बखैर मारो में सलामत। लेकिन नॉर्मली हम इतनी सेंसिटिविटी उन जेनेट्रीज में दिखाते हैं जहाँ खाते पीते लोग होते हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ ना तो आपको अभी हक है, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं बिल्कुल भी आपकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी, ऐसा नहीं है? नॉर्मल की बात। देखिए खुदा ना करे स्पेसिफिकली किसी पर्सन की बात, पर्सन टू पर्सन कभी भी दर्शों में नहीं हो सकती बात, लेकिन नॉर्मली हमने किसी ऐसे मोहल्ले की किसी उसमें जाना तो हम इतने हाइपर नहीं होते। मसलन हम शादियां देख कर, एरीना की शादी है तो क्या पहन के जाना, और कैथोलिक की शादी है हमारे थोड़े बाजार में तो क्या पहन के जाना, किसी ने भोजानी में शादी रखी तो बुरका पहनकर चले जाओ किसी को भी पता नहीं चलेगा। यानी हम अपने अंदर के किसी एहसास से कमजोरी को छुपाने के लिए, या फिर एक और तीसरा व्यू भी है जो मैं आखिर में अगर याद रह गया तो डिस्कस कर दूंगी, वैसे इसके याद रहने के चांसेस बहुत कम है, इशारतन डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि टाइम की सुइयां तेजी से आगे जा रही हैं। मेरा अपना कोई रंग नहीं है, समझे? एक मिनट। हाँ, मेरा अपना कोई रंग नहीं है, मैं अपनी अतराफ की चीजों से अपने आप को रंगीन कर रही हूँ। गहरी बात है थोड़ी सी, मैंने भी किसी उससे पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको बहुत कंसंट्रेट किया। कहा कौन से लोग ऐसे हैं जो अपने सेलफोन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं? तो एक वक्त में हमारी जरूरत है एंड्रॉइड, एक वक्त में हमारी जरूरत है स्मार्ट सेलफोन, एक वक्त में हमारी जरूरत है मतलब ई बुक्स पढ़ने के लिए टैब या ये अलले तलले टाइप की चीज, लेकिन इसके मॉडल पर कौन सेंसिटिव होता है? बैग ब्रांड्स पर जो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं से सांस गुजार भी देती हैं। सानिया मस्कती का है भाई, हमारी बला से किसी कब्रिस्तान से भागकर लाई हूँ, हमें क्या आपने लालू खेत की मार्केट से लिया या हाइपर स्टार से? लेकिन आपने देखा है अगर मेरा अपना रंग हल्का है तो मैं इन चीजों को इतना कलरफुल कर दूंगी कि आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और फिर मैं कुरान की आयत को भुला दूंगी, वह तो इज्जत मन तशाओ विल्लु मन। और एक और आयत भी है कि इन्नल्लज़ीन आमनू, कि वो लोग जो साहिबान ईमान हैं, और उसके बाद एक और लफ्ज भी है कि वो खुदा के वादों पर वो करते हैं। कहा सैयद अलर्रहमान लहुम वुद्दा, खुदा कुछ लोगों की मोहब्बत दूसरों के दिलों में करार दे देता है, मोहब्बत इन चीजों के साथ वाबस्ता नहीं है। खुदा ने अगर किसी शख्स की मोहब्बत उसकी कंपनी को एंजॉय करना लिखा है तो वो बिल्कुल बेचारा ओझलू शलवार और कमीज और दुपट्टा और होगा तो भी आपको उसके पास बैठ के मजा आएगा, आप उसके पास बैठना चाहेंगे, आप उसकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। लेकिन बहरहाल स्कार्फ की पिन पहला इशू, दूसरी तरफ आए हील वाला जूता। अब मैं आपको फिर 30 सेकंड दूं बोलने के लिए, अलबत्ता अगर सिस्तानी ने कहा अगर मस्तता है तो जायज नहीं है, ये जो टिक 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 की आवाज आती है, पुराने जमाने में जब बचपन में हम ड्रामे देखा करते थे ना तो जहां कहीं आती थी तो इंसान सेंसिटिव हो जाता था। पिछले दिनों में किसी हॉस्पिटल की लॉबी में बैठी हुई थी और वह आवाज आने लग गई वैसी वो जैसी बचपन में आती होती थी, वो बंदा मुड़कर देखता है कौन आ रहा है, अच्छा वो आंटी आ रही है, टिक टिक टिक। इतनी इतनी हीले पहनकर जो जा रही हैं इसका क्या सोच होती होगी? हमेशा हाइट का इशू नहीं होता, देखिए हमारी बहन का कहना हाइट का इशू हमेशा, अच्छा लंबी हाइट वाली को तो कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं हील नहीं पहन सकती, या जिनकी ऑलरेडी शोहर के साथ मैच कर रही होती हाइट वो नहीं पहन सकती, उन्हें तो बरी और जहेज में कोई हील वाला जूता ही नहीं देता, कहती ऐसे ही सादे जूते पहनो, खुद सा पहन लो, दो पट्टी की चप्पल पहन लो, हील वाला जूता मत पहनो। हमारे सिस्टर का कहना है कि हाइट इशू होती है, सिर्फ हाइट इशू होती है या उसकी आवाज पैदा करना चाहते हैं हम? अगर हम कार्पेटेड एरिया में जा रहे हैं, ठीक है एक मिनट अगर मैं बात पूरी कर लूँ फिर मैं भूल जाऊंगी, अगर मैं किसी कार्पेटेड एरिया में मैंने जाने जहाँ लॉन में जाने जहाँ आवाज नहीं होगी तो बाद हम फिर हील को प्रेफर भी, मैं तो खैर पहनती नहीं हूँ, एक बात करी जो पहनता है उसे पता, उसने लॉन में चाहती है उसे पता है कि लॉन में टिक टिक की आवाज, उसे किसी ऐसी जगह पर पहनकर जाना चाहिए जहाँ वो टिक टिक कर सके और चार लोग गौर से उसे देख सके। हील इन्होंने कहा हाइट का इशू है और ओके ओके देखा कितना अच्छे मेरी मालूम आदमी भी अलकायमा का इजाफा होता है। हील वाली जूती भी मुमकिन है मेरा कद की एहसास कमतरी भी हो, मुमकिन है मुझे कोई ऐसा एहसास कमतरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी खुदा ने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह आजा की सलामती और क्या चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने बहुत मुजयन किया है बहुत सारी दूसरी नेमतों से। मतलब हील वाली जूती हम नहीं सोचते कि इसकी आवाज नामहरम को हमारी तरफ खींचती होगी, करती है कि नहीं करती। और अगर इसी को बरस मर्दाना कर ले, कभी कुछ जेंट्स ऐसी टिक टिक वाली जूतियां मैंने एक बेचारा जॉगर पहन कर टहल रहा और एक वो वाला जूता पहन के हम खुद मुतवज्जे होते हैं ऐसी चीज के, वो थोड़े की तरफ बरस रही होती है आपके ऊपर टिक टिक टिक, ओ भाई बंदा क्या ऐसी थे जूते नहीं पहन सकते थे टहर में क्या प्रॉब्लम था। लेकिन हील वाली जूती हम इसके फकी मसाइल, अभी मैं देखे मैंने फकी मसाइल को टच नहीं किया वरना मैं इन चीजों की फकी मसाइल को भी आपके साथ शेयर कर दी। इसके बाद आ जाए आस्तीनों के अंदर मोती और जालियां, जालियां समझते हैं वो जो स्लीव्स आती है उसके ऊपर एक पूरी लेयर होती है, उसके ऊपर बड़ी सी चौड़ी सी लेस लगी हुई होती है, उसके अंदर छोटे छोटे से स्टोन्स लगे होते हैं। आस्तीन का मकसद क्या था, मेरे बाजू को छुपाना, ना महरम इस बाजू की तरफ मुतवज्जे ना हो, इसके ऊपर ये नगीने लगाकर क्या साबित करना चाहते। हत्ता हम जब बरी और जहर के कपड़े बना रहे होते हैं ना तो लोग कहते हैं दुल्हन के लिए आस्तीनें खरीद रही हो तो ये वाली ले लो ना, हर सूट के साथ मैचिंग ले लो ना, यूं कर लो ना यूं कर लो ना। अच्छा उसके अंदर वो फिर वैरायटी, और जो लोग ऑर्डर्स पर इस तरह के काम करते हैं वो बेचारे मेरा दर्द सुनकर मुझे कितना बुरा भला कहेंगे, लेकिन जो लोग ऑर्डर्स पे ऐसे काम कर रहे होते हैं वो स्पेशली आपको दिखाते हैं कि देखिए ये इसके साथ हमने तो फलां के लिए ऑर्डर पर तैयार किया है। इस तरह की चीजें जब हम कर रहे होते हैं हमारे लाशौर में क्या होता है, हम चाहते हैं सामने वाला मुतवज्जे रहे, इस्लाम चाहता है तवज्जो को हिजाब के जरिए ब्रेक दे दी जाए, इसीलिए सिर्फ हिजाब की बहस नहीं करता सादगी की बहस करता है। मैं इस आयत का एक नुक्ता पढ़ी थी, अजीब जुमले हैं कुरान के, ताकि तुम पहचान ली जाओ, यानी एक आजाद औरत में और एक लॉन्डी में फर्क होना चाहिए, एक आजाद औरत में और एक कनीज में फर्क होना चाहिए। उस जमाने के कल्चर के हिसाब से जिस तरह से बात रिवायात में होता है कि कनीजें पाजेबे पहनकर फिरती थी, लेकिन पर्देदार और महजबात और आजाद खवातीन इस तरह के काम नहीं करती थी। हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक आजाद माशरे में खुदा ने पैदा किया, हमने खुद से ऐसी कोई ना कोई काम करने शुरू कर दिए जो हमारी शाया निशान नहीं थे। अब इसके बाद एक कंट्रोवर्शियल इशू पर आ जाए, अच्छे दीनदार जो पूरे सर से हेड टू टो पूरे काले हिजाब में होते हैं, जूते के अंदर जीनत का मसला। कैसे खामोश हो गए, इनके घर वालों को बुलाकर दिखाया, हम चुप भी करते हैं। आज मेरे बच्चे मेरी बेटी से कहते 20 मिनट चुप रहो, हर मिनट पर 1 रुपया दोगे। मेरे घर में रौनक होती है बच्चियों के दम से, तो देखिए कैसे सब खामोश हो गए। जीनत का जूते के अंदर जीनत का मतलब आप में से मुझे कोई बताएगा, वरना जिन 3-4 के मुझे नाम आते हैं मुझे मजबूरन उन्हीं को कॉल करनी पड़ेगी। बोलिए सिर्फ स्टोन, किस तरह के जूते। जब आप एक जूतों की दुकान में दाखिल होती हैं, ठीक है, उसने एक पार्टी वियर वाले जूते रखे हुए और एक स्कूल के जूते हैं, एक वो सॉफ्टीज हैं मेडिकेटेड, एक तरफ फिर जेंट्स हैं। अच्छा हम उस कलेक्शन के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, जैसे अभी हमारी इस बहन ने कहा कि स्टोन्स लगे हुए हैं, सिर्फ स्टोन नहीं, आजकल तो जूतों पर बहुत कुछ है, शीशे के टुकड़े जोड़कर लगाए जा रहे हैं। ब्राइडल के साथ आप जब ब्राइडल का ऑर्डर देते हैं तो वो ब्राइडल ही के वाले वो कढ़ाई वाले लल्ले तलल्लों का आपको एक टुकड़ा जो है वो जूता बनाकर ऑर्डर पर दे देता है। जूते में जीनत के मसले में दीनदार लोगों का कॉन्सेप्ट, बाद लोग कहते हैं हमने मोजे पहन लिए काफी है, महज पैर के हिजाब के लिए मोजे पहन लेना काफी नहीं है। नीचे आपने देखा कैसा जूता पहना हुआ, जूता भी रंग और स्टफ के एतबार से जीनत और हराम हो सकता है, चाहे उसके अंदर हील हो चाहे उसके अंदर हील ना हो। यानी ये चीज इरिटेटिंग है, मतलब यहाँ पर तो बाहर जूते नहीं है, मुझे लगता है आपको मीना की याद दिलाने के लिए थैलियाँ नहीं हुई है, ठीक है, जूते साथ रखे हुए चले, अच्छे ऐसी बहाने खुदा हम सबको हज पर बुलाए और हम वहाँ पे जूते थैली में डालकर मस्जिद में तवाफ करते हुए नजर आए। लेकिन हम मसलन किसी जगह पर मदरसे में जाते हैं, मसलन 100-150 बच्ची हमारे सामने है और जूते सारे एक लाइन बड़ी तमीज तरीके से लगाए हुए हैं, जब हम अपना जूता उतारते हैं तो जूते देखकर हैरान रह जाते हैं, ये बच्चियां दीनदार बच्चियां हैं, अपना आराम अपने काम अपनी आसाइश पूरे वीक में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लोड के बावजूद यहाँ आकर बैठी हुई है, लेकिन इस जूते के मसले में इन्होंने शरीयत के कानून को पैरों तले रौंद डाला। हम जूता पसंद कैसा करते हैं? एक मिनट, मैंने दो किसने बनाई हैं? आप लोग वैसे मेरा साथ नहीं दे रहे, एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। मेरा दिल दुख जाता है जब कोई इस तरह से जी लेकिन मुझे उससे साथ सही ना लग रहा है, कुछ जी बोलिए। मैं इसका मसला आखिर में बयान करती हूँ, मैं अभी दुल्हन की तरफ आ रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें। दुल्हन और दुल्हन के साथ वाले जो वीआईपी चेयर पे बैठे थे ना, कैसे एक रॉड होती है गर्दन में जो आगे से वीआईपी चेयर वाले होते हैं और बहरहाल, लेकिन जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, हमारे पास जूतों की दो इकसाम होती, शादी वाले जूते समझ गई, पार्टी वियर होते हैं और कैजुअल वियर होते हैं। पार्टी वियर कैसे होते हैं? कैनवस शूज पार्टी वियर कैनवस नहीं। अच्छा, अगर आपके फैमिली से दुल्हन ऐसी शादी थी बिल्कुल मासूमाना से जूती पहनी हो तो कैसी लगेगी? दुल्हन नहीं लगेगी, क्या लगेगी बोले कोई आम सी। अच्छा, और ये दुल्हन बेचारी को तो साइड पे रख देना, दुल्हन ही सुनेगी ना, तो मुझे हमारे बाजों का लोकप्रिय मैरिज काउंसलिंग के सेशन होते हैं, दुल्हन बेचारी कैसी है, बैरांटी के बाद बैठे दस चीजें आराम कर देगी। मैंने कहा हमारा काम सीरियस बताना है, बनाना नहीं है। और वैसे मैंने किसी शादी में जाना, वो दुल्हन ने टीका भी नहीं लगाया हुआ, वो सिर्फ नमाज का इशू, वुजू का इशू नहीं होता, सजदे गाह से टकराती नहीं है पेशाने की खाल, ये जो दुल्हन की बेस होती है आपने देखा, यूं करे तो समझ गए ना, ये बात सिर्फ ऑन रिकॉर्ड नहीं जा सकती, ऐसी बातें सिर्फ इशारों में समझाई जा सकती है। और अरबी में जुमला किनारे तो अब लोगों में नस्तर सही बात बातें खुल के ना कीजिए, ऐसे इशारों में डिलीवर कर दी जाती है सामने बैठी हुई मोमिन आप तक। लेकिन तीस के पेशानी की खास जगह से नहीं टकराएगी, हम सबको पता है वो से जो 20-22 हजार रुपए लिए किस चीज के लिए, सिंपल से ब्राउन केक को आइसक्रीम पेस्ट्री में बदलने के लिए। वो अच्छी खासी ऐसी सी शक्ल की दुल्हन होती है, जब बाहर निकल के आती है मुगलिया शहजादी लग रही होती है, इंसान जोर से पड़ जाता है। और दूल्हा अगले दिन जब दुल्हन मूड होती है तो कहता अम्मी भाव है कम दुल्हन तो कहीं चली गई है, ऐसी सूरत हाल होती है। लेकिन हम शादियों में जाने के लिए, मेरा अपनी इस बहन से सवाल है, हम शादियों में जाने के लिए कैसे जूते मुंतखब करते हैं? ऑब्वियसली हम भी फैंसी को प्रेफर करते हैं, हत्ता मतलब अगर हम ये घर वाले किसी ऐसे अच्छा अच्छे डिसेंट स्टैंडर्ड हैं, अच्छी ब्रांड के हैं, वो लोग जो ब्रांड कॉन्शियस हैं, ठीक है, हश पपीज के हैं, पता नहीं फलाने के हैं, ढिंकाने के, हमने अच्छा जूता पहना हुआ है, जो बाद निकलते घर में कोई कह देते हैं ये शादी वाले जूते नहीं है, यानी ये सारे सवाल की मस्जिद वाले जूते हैं, जो मस्जिद वाले जूते हैं जो बाहर से उठाकर कोई ले जाए। अब आप मुझे बताएं हम दीनदार हैं या नहीं? अगर हम इस मामले में अमल नहीं कर रहे, और नॉर्मली मैंने कहा ना ये दीनदार लोगों का इशू है, वो जो बिल्कुल ही फिर रही होती हैं अल्लाह के आसरे पर, उनकी तो हमने भी कोई बात ही, अभी मुझे लगता है मैं उस तवक्के तक जा भी नहीं पाऊंगी। ये तो हम दीनदारों के अंदर जो गैर इस्लामी फैशन राइट है उन्हें शेयर कर रहे हैं। जीनत के बाद में जूता, सनग्लासेस, रिस्ट वॉच, ये सब चीजें अगर इनमें जीनत है तो आप इन्हें पहनकर नामहरम के सामने जाहिर नहीं कर सकते। खलास, एक जुमला। मैंने एक मसला पूछा था हैंडबैग के हवाले से, तो कहा वो पोशाक का हिस्सा नहीं, मैंने कहा शुक्र, वरना जी मैं बैग अच्छे बैग का, क्योंकि बैग से ना भी स्टोन्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा बड़े वो चमक रहे होते हैं भाई, बाद आप किसी मौत से ऐसी मुतासिफाने गुजर से बंदा सोच भी पड़ जाता है, ऐसे बैग वैसे बैग, वो दुल्हन वाले बैग, पार्टी वियर के साथ ब्रांडेड बैग, इस तरह के रले सलले। मजे की बात है कफन में कोई ब्रांड नहीं देखता भी नहीं, हम लोग गुस्से देते अपने हाथों से नहीं देखते, चुपचाप जो भी होता है लपेट लपाट कर अंदर डाल देते हैं, अब तुम जानो तुम्हारा काम। इसके बाद अब एक और हराम गैर इस्लामी फैशन जो हमारे माशरे में आजकल कौन सी बीमारी चली है, वो चिकनगुनिया है ना, बहुत खतरनाक, पता नहीं मुझे नहीं पता, उसके बाद मर जाते इंसान, अच्छा बॉन्स की है, इस तरह से फैली हुई हमारे दरमियान एक बीमारी टाइट्स। अच्छा, टाइट्स में एक वक्त में तो घर के अंदर भी मसला खड़ा हो जाता है, मुझे ताज्जुब है उन खवातीन पर जो घर में जवान बेटों के होते ऐसे कपड़े पहनती, उन बच्चियों पर जिनके घरों में भाई या मुमैयस हैं या बाले हो रहे, किस तरह से ये पहनती हैं, किस तरह से ये पहनती हैं, और उसके ऊपर लंबे लंबे चाकों वाली कमीजें या वो शॉर्ट कुर्ती है जुनेद जमशेद की, ऊपर से चीजें स्कार्फ और श्याला ले लेती हैं, उसको भी गर्दन पर कस लेती हैं ऐसे जैसे खुदा खासा भुट्टो की जगह इन्हें फांसी पे लगाया जाए। और उनके बाद कहते हैं हमने तो इजाज किया है, अलहमदुल्ला देखे हम इजाब करते हैं, हमारे स्कूल में तो कोई भी नहीं करता, सिर्फ हम ही करके जाते हैं। जनरल खालिक ये कौन सा हिजाब है? ये यूरोपियन हिजाब है? ये कैनेडा से आया हिजाब है? ये हिजाब है? मुझे एक जुमला बड़ा अच्छा लगा, हम हाफिज बशीर हुसैन नजफी साहब के साथ किसी फैमिली मेंबर को मिलवाने के लिए ऐसे उनकी जारत के लिए लेकर गए कि उनके लिए दुआ खैर कर दें बच्चों बच्चों के हक में। तो उससे पहले कोई खातून मसला पूछ रही हिजाब का, हमसे पहले कोई ग्रुप बैठा हुआ था जिससे जायरीन जाते हैं बुजुर्गान के पास और दुआएं वुआएं लेते हैं और तकरीर सुनते हैं। तो एक मोमिना ने ऐसे कुछ मसला पूछा तो हाफिज साहब, क्योंकि वो आगे बहुत सारे लोग बैठे थे 150-200, हम बिल्कुल आखिर में बैठे हुए थे कोने में दबक के बैठे थे, मसूम सी शक्ल बनाकर इंसूमत खोलने का इंतजार कर रहे थे, जैसे अभी आप भी दर्द के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार करते कि हाफिज साहब कब चुप हो ये जाए, हम जाकर उनसे सलाम दुआ करके और एक ज्यारत करके बाहर निकल जाए। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा, कहा जनाब सैयदा होती इस समझ में भी सुलिया में आती नहीं आती ना, और हम फिर मजलिसों के चारों में लिख देते कमीज़े जनाब सैयदा, लेकिन हमारा कोई भी काम उनके साथ रिजम्बल नहीं करता। टाइप्स आपके ख्याल में ये जो घरों में भी पहन के हम फिरते हैं, हमसे मुराद पब्लिक, नाउज़ुबिल्लाह हमारी कैसा सिली शौक नहीं पाला हुआ हमने, लेकिन हमारे माशरे में दीनदार बच्चियां घरों में इतनी नामुनासिब ड्रेसिंग करने लग गई हैं कि एक जुमला मुझे बोलते हुए डर लग रहा है, बोल दूं मैं डर रही हूँ। पता है मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, कहती तुम जिस दिन पैदल से डरने की छुट्टी थी, महरमों के अंदर गुनाहों का कॉन्सेप्ट इस तरह की ड्रेसिंग की वजह से, मैंने बहुत बहुत महजब तरीके से एक बात कह दी है। हमारे उस्ताद आ गए अली अकबर मज़ाहरी दामद लोलानी, इस वक्त होता है इस्फहान की मुदीरियत है उनके पास पिछले 18-19 साल से, वो जुमला गा करते थे जो बच्चे माँ को इस तरह की ड्रेसिंग में देखते हैं वो बड़े होकर सिर्फ बेगैरत होते हैं, उनका जुमला है, मैंने उन्हीं की जुबान से मुसल्ले कुछ में 90s की दिहाई में सुना था, 1991 की बात है। हमारे यहाँ खवातीन घर के अंदर बाजूकात बहुत ही नामुनासिब ड्रेसिंग होती है, पहले भी आगे गर्मी आ गई और उनका समर कलेक्शन देखने वाला होता है सर्दियों में, तो फिर हम इसलिए भी कभी खुदा की कदर से अपने आप को ढांपे ना ढांपे, सर्दी की वजह से हम अपने आप को ढांपे थे, सर्दी की वजह से अपने आप को ढांपे थे। टाइट दीनदार लोग इस तरह की चीजें पहनते हैं, और फिर वही बात आपकी टांगों की पूरी शेप, आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, आप मसलन सर्विस दे रहे हैं, फर्स्ट करें मसलन कोई चना की फैमिली आई है शाम की चाय पर, बच्ची उठ रही है बैठ रही है, ऊपर से स्कार्फ ले लिया, नीचे से लंबे चाकू वाली कमीज पहन ली, नीचे टाइट्स पहन ली और मोजे चढ़ा ली, काफी है। जरा सी हवा के साथ जब ये दामन हिलता है, और दामन भी इतने मुख्तसर हो गए हैं, बाज अच्छी है जो ब्रांड्स हैं उनके अंदर इतना सा दामन है, ये इतने से दामन से किस तरह से कवर हो गए था, ये इस तरह के गैर इस्लामी फैशन दीनदारों के घरों में राइज हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। कि अब फिर इसके बाद एक और इशू मैंने लिखा है, चिकन के वो पजामे जिनमें पांचे के पास सुराख होते हैं, मैंने आज सुबह 4:30 की मजलिस में देखा एक मोमिना को, मैं सोची थी नमाज कैसे पढ़ेंगे, वैसे उन्होंने मोजे नहीं पहने थे, ये चीज आपकी नमाज को भी बातिल करने का सबब बनती है ना, वो इतने इतने से सुराख ही आपकी नमाज की कच्ची को डबो देंगे, चिकन ब्रीजे पता नहीं ये और वो और खुदा खासा इस तरह की बहुत सारी चीजें, वल्लाहु आलम मुझे नहीं मालूम कि हम खुदा की बारगाह में किस तरह से जवाब दे होंगे इन इस तरह की कोताहियों के, जो हमें खुदा ना खास्ता, मेरी मैं एक रिवायत पढ़ी थी शायद अल्फाइज ही कि किसी नोट्स में पढ़ी थी किसी और टीचर के वो औरत जो रिवायत बहुत मारूफ है मेराज के हवाले से कि पैगंबर जब गए एक आसमान पर देखा तो एक औरत बालों के बल लटकाई गया, तो कहा ये वो औरत थी जो नामहरम से अपने बालों को छुपाती नहीं थी, और फिर उसके अलावा बेहिजाब औरत के जो गुनाह और जो उसका अजाब है कब्र के हवाले से, जो उसका अजाब है महशर के हवाले से पूरे सिराब के हवाले से नामहरमों के उसके चेहरे पर, हत्ता अगर औरतें सबब बनती हैं दूसरे मर्द गुनाहों में मुब्तला होते हैं उनकी फैमिली क्लैशेस का शिकार होती है, उनकी फैमिली क्लैशेस का शिकार होती है। मैं सब कंसंट्रेट कर रही थी, सबसे ज्यादा मीडिया का फोकस फैमिली को तोड़ देना, जब जिस दिन फैमिली टूटती है ना, बकौल मकाम मजहब रहबरी के एक में जन गोहरे हस्ती के हवाले से उनकी कुछ तकारीर छोटे छोटे टुकड़े सुने थी, पूरी तकरीर में उनकी कोई भी नहीं सुन पाई, लेकिन उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि घर को सिमट के रखो। इस्लाम पसंद करता है कि तुम घर को अपने को अपनी घर की बॉन्डिंग को स्ट्रांग करो। इसलिए रिवायात कहती है कि वो मर्द जो मस्जिद नबी में एतकाफ में बैठा है उससे ज्यादा सवाब वो मर्द कमा लेता है जो अपनी फैमिली के साथ दस्तरखान पर बैठा है। यानी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली को क्वालिटी टाइम दो और ये हाथों से मोबाइल छोड़कर डाइनिंग टेबल पर सारे साथ बैठे ना, वरना बाद में वैसे घर में एक उसूल होना चाहिए दस्तरखान पर कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, चाहे वो टी टाइम हो चाहे वो लंच टाइम हो, सुबह नाश्ते का टाइम तो ऐसे ही सबका अपना तफरी का होता है ऑलमोस्ट घरों में। आखिर में एक आधा बंदा और सीनियर सिटीजन रह जाते हैं सुकून से नाश्ता करने वाले, बाकी तो हर कोई हड़बड़ में होता है। लेकिन इंसाफन बहरहाल ये एक चीज है कि चिकन के ऐसे पजामे जिनमें नीचे से सुराख होता है, आप देखिए इतना बड़ा पांचा है, ये औरत थोड़ा सा उठती है बैठती है बाद तो आधी पिंडली नजर आ रही थी, बाजू पर टांग पे टांग रख के बैठी होती है बाजू में ना, आपने देखा है वेटिंग लाउंज में है या हम किसी का इंतजार कर रहे हैं हम ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे, ये वो फैशन है। अब आ जाए इस सारी गुफ्तगू के कंट्रोवर्शियल तरीन पर्सन की तरफ। हमारे दीनदार तबके में एक वो जमाना था आज से 30-35 साल पहले का जब हिजाब का इतना ज्यादा रवाज नहीं था, और उस जमाने में भी एक खातून को तो इस्तिस्ना हिजाब से समझा जाता था, वो है दुल्हन। मैंने खुद अपने आगा का आगा मियासुदी का एक लेक्चर अलकायम का ही सुना, अलकायम वालों ने भेजा होता व्हाट्सएप पर कि दुल्हन को अगर पर्दा करवाएं तो मौलवी साहब को उसके बराबर में बिठा दो। इंसाफन किसी से पर्दा करे ना करे, फोटोग्राफर बता रहा था यूं चेहरा करो, उसकी कंधे पर यूं ढोड़ी टिका दो, गर्दन उल्टी कर दो, मर जाओ जी जाओ सीधी खड़ी हो जाओ, लेकिन जहां मौलाना साहब निकाह बढ़ाने के लिए आते उसके ऊपर एक फटाफट चादर डाल दी जाती है कि मौलाना साहब ना देख पाए दुल्हन कैसी लग रही है। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ दुल्हन सरापा जीनत होती है, दुल्हन सरापा जीनत होती है। दीनदार लोग जैसे अभी आपने कहा ना कि सबने जीनत की हुई है, ठीक है, अगर हम पर्स करें थाईलैंड के किसी बीच पर चले जाएं तो ओनली ड्रेसिंग करने लग जाएंगे, नहीं ना, हमने थाईलैंड का बीच सिर्फ टीवी में ही देखा या उनसे सुना तो होकर आए थे। ये चीज फैमिली को खराब करती है। अगर मसलन माशरे के अंदर चार ऐसी यानी गैर महजबा खवातीन हैं और बहरहाल ना महरम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये चीज हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया बनता चला जा रहा है। और इसी अलमिया के अंदर दीनदार लोगों ने शादी के मौके पर दुल्हन को एक छोटा सा स्कार्फ पहना दिया, वो स्कार्फ इतना छोटा होता है कि वो बाद कर कमीज के अंदर डाला जाता है, देखा आपने कभी किसी दुल्हन को तैयार होते हैं, उसके अंदर से उसको बाद कर टीका भी लगा दिया जाता है, बाद कर कुछ चौड़ा चेहरा हो तो वो तो ब्यूटिशियन ही बता सकती, झूमर भी लगा दिया जाता है, फुली वो मेकअप उसका हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर उसने कामदार दुपट्टा और भारी भरकम मेहंदी मेहंदी सब लगी होती है, वो छोटा सा स्कार्फ पहनाकर जब फोटो सेशन किया जा रहा होता है तो कह रहा था दुल्हन हिजाब में है, दुल्हन का हिजाब मुकम्मल नहीं है, ये कौन सा हिजाब है। और उससे ज्यादा मैं आपको बताऊं अलमिया की बात क्या है, हम उसे फोटो सेशन के नाम पर एक ऐसे मर्द के हवाले कर देते हैं जो कैमरे को हर एंगल से जूम करके देख सकता हो। हम ये सोचते नहीं कि ये बच्ची है, अभी अपने शौहर के घर में भी नहीं गई, अभी ये बाप के घर से उठी है और अभी तक तो रुख सकती नहीं ना, वो से कहते यूं करो यूं करो यूं करो, यहाँ आते कोई ऐसी ऐसी तस्वीरें खिंचवाई जाती है 20 साल बाद बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे, अम्मी अब्बा भागे जा रहे थे या आपका कहीं भागने का इरादा था। और ये अच्छा उसके बाद फिर नूर अल नूर जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती इन तस्वीरों को फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं लोग, दीनदार माशरे की इस तरह की कवायदें चल रही हैं। और बाद का मसलन हम मिलाद पढ़ने के लिए दुल्हन का गए हैं, हमारी तस्वीर खींची हो पीछे से वो गेंदे के फूलों वाला एक छोटा सा आपने स्टेज सा बना दिया, मेंबर सा बना दिया, अजीब इस तरह के तमाशे हमारे दीनदारों के अंदर शुरू हो गए कि इंसान अपने हिजाब के हवाले से सेटिस्फाई होता ही नहीं है नॉर्मल हालात। अगर आपको दुल्हन को हिजाब कराना है तो फिर उसको सर से पैर तक लपेट दें, अगर आपने उसको अंदर इतने भड़कीले कपड़े पहनाने हैं, और फिर वो जूते का इशू दुल्हन के लिए दोबारा खड़ा होता है क्योंकि बिलाखिर जब वो रुख्सत होकर जाती है तो गाड़ी हॉल के अंदर नहीं आती, और दुल्हन को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए अस्तगफुरुल्लाह कहना भी चाहिए, वो लोग भी दुल्हन को कुरान के नीचे से गुजारते हैं जिनका नाम लेना भी इस मदरसतुल कायम के अंदर मुनासिब नहीं है। और इन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी कुरान की के साए में कुरान के कवानीन की बेहुरमती होती है, कुरान की नाफरमानी, यानी आप देखो पर कुरान रखा था, बाद वक्त ये कुरान सर पर रखने वाले नामहरम होते हैं, कोई चचा का बेटा है कोई फलाने का बेटा है वो कुरान लेकर चल रहा है और दुल्हन बेचारी नीचे चल रही है, अजीब सी सूरत हाल हुई होती है। अब इन चीजों को किस तरह असल मसला है कि इन चीजों को कंट्रोल किस तरह से किया जाए। हमारा हाल पता है कि हमने बिल्ली में को थैली से निकाल तो दिया है लेकिन अब इस बिल्ली थैली में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, हमने अपने नफ्स को इन लज्जतों का इतना आदि कर लिया है कि अगर कोई नामहरम कहता है भाभी की ड्रेसिंग तो बहुत ही गॉर्जियस है और अपनी बेगम से पलटके के समाना तुम देखो कैसे भाभी इतना अच्छा हिजाब के साथ भी मतलब अच्छे और बेहतरीन ड्रेसेस पहनती हैं, तो बाज़ दीनदार औरत भी घर में आकर खुश नहीं होती, शोहर को भी सुनाती है कि आपको तो तौफीक हुई नहीं, वो देखिए कितनी तारीफ कर रहे थे, नाउज़ बिल्लाह जालिक, मरने का मकाम है एक औरत के लिए, एक दीनदार औरत के लिए इससे ज्यादा क्या शर्म की बात होगी कि एक नामहरम खड़ा हो रहा है और उसकी उसके लिबास की और उसकी दूसरी चीजों की तारीफ कर रहा, और हम इसे ऑनर की तरह फील कर लेते हैं। असल मसले कि खुदा ने हमें आजाद खल किया था, हमें आजाद औरतों वाली इज्जत, जरा बोले आप, अगला जुमला बड़ा तल्ख है लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रही थी, हमें आजाद औरतों वाली इज्जत रात क्यों नहीं आई? अब बोले दो मिनट आप बोले, मैं आखिरी इशू बयान करके खत्म कर दूंगा। नफ्स की लज्जतें औरत के बारे में वैसे भी मशहूर है कि गाड़ी पेट्रोल से और औरत तारीफ से चलती है, यानी कोई तारीफ कर देता तो बेचारी सोचती है कि अच्छा अगली दफा इससे भी ज्यादा, शादी में आपने तारीफ की वलीमे में इससे भी ज्यादा चौथी की दुल्हन बनकर जाएंगे। इंसाफ तो यही है, आप देखिए माशरे का ट्रेंड ऐसा ही है, आप तो बगैर हिजाब के पहचान ही नहीं जा रही, अच्छा आप काले के अलावा भी कोई रंग पहनती हैं, मतलब ये बहुत पेटेंट से जुमले हैं जो बोले जाते हैं माशरे के अंदर, और बजाय कि हम इससे अपने अपने अंदर एक दुख का एहसास करेंगे क्यों सामने वाले ने इस तरह से कह दिया, यानी उसने मेरे अंदर जीनत को महसूस किया, उल्टा हम खुश होते हैं कि अच्छा हमारी तारीफ हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मेडल और हमारे सर पर, कल मैं एक वो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली किसी पायलट की देख रही थी, निंजा वाली खातून है एकदम अच्छा वाला परफेक्ट वाला हिजाब, मैंने सोचा जिसने करना है उसने चार दीवारी के अंदर इस प्रोटेक्शन के अंदर रहकर भी दुनिया को पता कर लेना, और जिसने कुछ नहीं करना वो बेचारी उसके अंदर और पेज एंड रवि के चार पर जो तस्वीर बनी होती है ना उस औरत के अंदर फिर कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन बहरहाल अब आखिरी चीज जिसे मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको पांच मिनट पहले ही छोड़ देंगे, कितना अच्छा ना जिन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया। अब आया ये जो कोट मानतो क्या कहेंगे, चौथा लोग आप बताएं, बुर्का तो हम पहनते ही जैसा हमारी अम्मी पहनती थी, याद है वो बोले जॉर्जेट के निकाब और एक बाल का नीचे से यूं लपेटा हुआ होता था और एक ऊपर से आ रहा होता था, ठीक है। अब हम उस तरह के बुर्के को पहनते हैं, अब तो वादियां भी नहीं पहनती, अब अबायाज ये जो हम पहन रहे हैं मुआशरे के अंदर, मैंने पिछली दफा एक स्पेसिफिक स्टफ का नाम दिया था, हमारी बाल बहनों को बुरा लगा और उन्होंने मुझे फीडबैक भी दे दिया कि जहरा आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, जर्सी, जर्सी का हर अबाया बुरा नहीं है, कंफर्टेबल भी है, इस्त्री करने का टंटना नहीं होता, पहना और वापस गुच्छा करके बैग में से निकाला वापस से पहन लिया, इजी टू वियर है जर्सी। लेकिन आपके पास में सारी जर्सी ऐसी होती, जर्सी में बाज काम कैसी आपकी समझ नहीं ना, आप मुझे ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। इस अबाया के ऊपर कितना कुछ लगाया जा सकता है, सिर्फ चोन, हाँ बहुत कुछ, सीक्वेंस लगी हुई होती है अबायाज के ऊपर, इतने बड़े बड़े गोल गोल कढ़ाइयों के, वो एक तो वो वाले अबायाज है ना जो रेड़ियों पर बिखरे होते हैं और जामा क्लॉथ के बाहर लटके हुए होते हैं गोल्डन कढ़ाइयों वाले, वो तो आप लोग नहीं पहनते, हम भी नहीं पहनते, ठीक है। वो जो दुबई से आते हैं और फिर व्हाट्सएप पर मैसेज चलते हैं दुबई के अबायाज अवेलेबल है, आप आकर देखिए इस अबाया के ऊपर इतना कुछ क्यों लादा गया है, बस मैंने अपने पेपर समेट लिए, अट्रैक्शन के लिए, चले अभी जैसे कोई बोले अबाया, आपने खाली आप अबाया खरीदने जाए किसी अच्छी ब्रांड का अबाया खरीदने जाए और उससे कहें बिल्कुल सादा, मुझे याद है मैंने किसी के लिए खरीदा था आज से 3-4 साल पहले, मैं बहुत अच्छी किसी शॉप में गई जो अपने इलाके में हमारे भी फ्रेंड सर्कल में सबने कहा तुम्हें वहां से हर तरह की अबाया मिल जाएगी और बड़ा उनका नाम है और बड़े उनके इश्तेहार है सब कुछ है, तो मैंने उनसे कहा मुझे एक ऐसा अबाया दिखाई जिसे कुछ भी ना लगाओ, तो वो बेचारे थोड़ी देर सोच में पड़ गए, मैंने कहा आगे से बंद भी हो ताकि अगर नीचे आपने कमीज और सलवार और पहनी हुई तो किसी को पता ना, अगर यहाँ पर आटे के निशान रह गए हैं तो किसी को पता, कभी कभी हम ये जो रिम से बर्तन धोते हैं सामने के ग्रीन ग्रीन से स्पॉट डार्क कलर में जम जाते हैं, वो सारे सारे आगों को छुपा लें, किसी को पता ना चले कि हम घर में क्या करके आए, बस ऐसा लगे वी आर लुकिंग और डिसेंट पर्सनैलिटी, बस खत्म, गॉर्जियस चॉर्जियस लगने का शौक नहीं, लेकिन ये तो दिल ही चाहता ना कि आपको पता चल जाए हम क्या करके आए घर से। मैं आपको बताऊं मुझे दैन लोग हिजाब करने वाली खुवातीन बाल का कम्प्लेक्स हो जाती हैं, वो बात काम नहीं करती, मतलब साफ का साइज, एक मिनट बहुत माजर आपकी बात काट रही हूँ, मेरा ये पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। आज से 20-22 साल पहले हमारे सर्कल में बाज लोग ऐसे थे जिनके मखने का साइज यहाँ तक जाता था, अब मखने का साइज वहाँ पर कहाँ पर आगे। एक्सीलेंट, इसमें से भी ना मतलब ये चीज है यू, ठीक है, ये यू है ना, मैं तो खरीद सुबह चादर लेकर आई, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, क्यों समझ गए ना। और बाद में कहते भी हैं तुम्हें दुपट्टा ओवरलैप करने की तमीज नहीं है, इस तरह से फैलाया हुआ है कि नीचे की कढ़ाई नजर अच्छा, तुम्हारी कमीज में यहाँ पर नेक बना हुआ था, पता ही नहीं चला, तुमने दुपट्टा ही पेंडुओं की तरह लिया हुआ था। ऐसे देहाती औरतें लेती हैं, ऐसे तो मासियां लेती, ऐसे तो दादियां लेती थी, यानी नाउजुबिल्ला अगर मैं अपनी दादी की तरह खोल कर और तमीज से दुपट्टा लूं, फैला कर और उसमें चुन डालकर तो मैं जाहिर हूं। आपने मुझे कहने कह ले मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम कहीं कहीं दीनदार, मतलब एक बार मेरे पास पर्सनली, मैं अपने वालदेन की तरफ लाहौर गई थी, फैमिली में किसी की शादी थी, उनका उन्होंने एक रिसेप्शन लाहौर में रखा था पीसी में, तो मुझे कहा कि आप आइएगा, मुझे किसी ने कहा फैमिली में से चली जाना, बड़ा मजेदार फंक्शन होगा, मैंने कहा मैं पीसी में चली गई। अच्छा, वो फैमिली मुझे पता है कैसी फैमिली है मिजाज के त्यौहार से, और पीसी में उन्होंने मेरे लिए पर्दे तो नहीं लगवाए होंगे, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से बैठी रहती हूँ तो मैं सबके दरमियान में अजीब अपने आप को, मजा नहीं आएगा। अच्छा, मैं उनकी तरह कौवा चला हंसी चाल अपनी भी भूल गया, मेरा अगर मूड होगा तो मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी, चाहे कोई पहने चाहे कोई ना पहने, हिजाब आई डैम क्या, मैंने ऐसे ही बैठना है, आपने मुझे एक्सेप्ट करना है, बुलाए अगली दफा ना बुलाइएगा। अगर आपके घर के, हत्ता हमारे यहाँ बाज वक्त मजालिस में, अगर आप लोगों में से बहुत सारी जाकिरा होंगी, हम मस्जिद पढ़ने गए हैं, हमने खुतबा शुरू किया, वो माइक में गड़बड़ हुई, उनके घर का साफ, कोई मर्द आकर टिक 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 कर रहा, आपको पहले से बोलना चाहिए था कि हमारे यहाँ हिजाब का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, वो मर्द पीछे से टहल रहे हैं, वो देगे उतरवा रहे हैं, वो सब चाय सर्व कर रहे हैं, अजीब मजाक बने पे अभी मस्जिदों में भी जाना छोड़ दी, ऐसी मजलिसों में भी मैं तो अब जाना छोड़ दी जहाँ अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन हो जाती है और इंसान अपने आप को ऑड और ऑकवर्ड फील करता है। लेकिन एक मिनट मैं इस बात को पूरा कर लूँ, हम बाज़ात अपने आप को ये दिखाने के लिए कि दीन हमारे पैर नहीं रोकता, लेकिन दीन रोकता है, दीन हमारे पैर रोकता है, बाज जगहों पर हमें जाने की इजाजत, आप मुझे सिनेमा में देखें कैसा फील करेंगी, बोलते बोले खुल के बोले, कुछ भी नहीं कहूंगी, नहीं मैं फर्स्ट करेगा मैं था, हाँ क्या कहेंगे आप, हाँ मतलब अजीब है और उनके अंदर तो अमल नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती, रेक्स में बैठी हुई थी या वो कौन से मूविन इस टाइप की किसी सिनेमा में, नाम तो मुझे सारे सिनेमा के पता, अखबार पढ़ती रहती थी जिसका हमारे में आता था, हमारे ससुर के लिए लगा हुआ था अखबार। तो अब मसला सारा ये है, आप मुझसे उम्मीद नहीं रखती, फरिश्ते आपसे नहीं रखते, फरिश्ते आपसे नहीं रखते, कैसे पता चलेगा खाते पीते घर की बहू बेटी हो, मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है, बल्लू मेरा नफ्स मुतमईन है, मुझे किसी को इत्मीनान। देखिए दुनिया को आप जितना कटहरे में खड़ा होकर वजाहतें देंगे, दुनिया आपसे उतनी वजाहतें तलब, आप पहले कभी सफा फाड़ दे, मैंने किसी को वजाहत नहीं देनी। तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई भाई की शादी में? नहीं लगाई, मेरी मर्जी, मेरी लिपस्टिक मैंने नहीं लगानी भाई की। मतलब अगर पढ़ते हैं भाई के की शादी में चार महरम है तो एक नामहरम भी नहीं होगा, स्पेशली हमारे इन्वायरमेंट की शादियां जहां सब कुर्बत लिल्लाह आखिर में घुसते हैं दुल्हन को देखने के लिए, दुल्हन ना हो गई, बड़े कहते मुहावरा भी है कि नवजात बच्चा जनाजे का चेहरा और दुल्हा दुल्हन देखने के लिए हर कोई लपकता है। तो हम इस तरह की सिचुएशन में, यानी खुदा खासा या मेरे अंदर का कम्प्लेक्स है फाइनेंशियली एतबार से, एक अब मैंने बात का खुलासा करना शुरू कर दिया, मैं आखिर में आप लोगों को एक दो मिनट सवाल के लिए दूंगी, या मेरा अपना पर्सनैलिटी, मेरे अंदर कोई मेरी जात नहीं है, मतलब मैं ये सब पहनूंगी ये सब लटकाऊंगी तो आप मेरे साथ प्यार से बात करेंगे, ना करें ना करें, सजेत अल्लाह रहमान कुत्ता। हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं जिनके कपड़े, जिनके ब्रांड, जिनकी घड़ियां, जिनके मोबाइल, जिनके जूते हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। आप आयतुल्लाह सिस्तानी के पास जाते हैं, मेटल डिटेक्टर में से गुजरते हैं लोग, और सीवियर किस्म का मेटल डिटेक्टर है। बाद में मैंने सुना एक दफा आप रिफ्यूज हो गए, दोबारा आपको जाने भी उस ग्रुप के साथ नहीं दोबारा जाने देंगे जो लोग रिफ्यूज हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? वो लोग जो यहाँ पर लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं, जिनके आगे पीछे गार्ड्स होते हैं, वहाँ वो शख्स जिसने मुझे नहीं पता वो कौन से ब्रांड के अबाकवा और अमामा पहनते हैं, लेकिन लोग झुककर दस्तबोसी करने में फख्र महसूस करते हैं, खुदा ने उसको इज्जत भी इज्जत कपड़े की मोहताज नहीं थी, इसलिए वरना फिर लेडी डियाना जब मरी थी तो मैंने उसकी उस दिन हिस्ट्री पढ़ी थी, 470 तो हेड्स थे सिर्फ उसके पास। ये चीजें अहम नहीं होती, बेचारी लेकर साथ कितने हेड गई होगी। हम भी कुछ भी लेकर साथ जाने वाले नहीं हैं। शादी में पहनने वाले जूते अगर मोजे के साथ पहने जाते हैं तो अट्रैक्ट तो नहीं करते, किसने कहा? हम शादी में काले मोजे पहनकर नहीं जाते, हमने स्किन कलर के मोजे ऑलमोस्ट शादी के साथ पहने होते हैं, फिर भी पहनना चाहिए। मोजे जूते के अंदर अट्रैक्शन आप कैसे पहन के नामहरम के सामने जाएगी? वो बेचारा देखेगा ऊपर से काली नीचे तक काली, वो नीचे क्या गोल्डन गोल्डन पहना है, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और हमारा ऐसा जूता खरीदना बता रहे कि अट्रैक्शन के लिए हम खरीद रहे, आम जूता 1800-2000 का, ऐसे जूते 4000-4000 के, 2000 का डिफरेंस आप किस चीज के लिए देंगे? नहीं, कलर्स पहने से इनकार नहीं, मैं अगली फिर आऊंगी इंशाल्लाह, संडे हो फिर टाइम हो गया जिसमें वैन से जाने के लिए इशू खड़ा हो जाएगा।
अभी तक तो जहन ये बना हुआ है कि सिर्फ काले पर हिजाब,
सिर्फ काले पर हिजाब की बहस नहीं है, सिर्फ काले पर हिजाब की। आपने जो शैला पहनी है उसका कलर भी जीनत में नहीं आ रहा, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ठीक है? शादी में काली चादर पहनने से लोग कहते हैं मुहर्रम में सिर्फ काला अच्छा लगता है, देखें काबे के गिलाफ को भी सी ग्रीन करवा दें। मेरे पास ऐसी जवाब है ऐसे लोगों को देने के लिए, इसके अंदर कोई मुहर्रम और गैर मुहर्रम की बहस? अगर शीशानी की नजीक तो काला लिबास पहनना वैसे ही मकरूह नहीं है जो बाकी फुकहा बुजुर्गवार ने मांगा है। लाइट कलर की चादर की इबादत है, काला कलर भी तो अट्रैक्ट करता है। आप देखिए ईरान और इराक में बाज ऐसी सीरियन लबनानी, उन्होंने हिजाब पहना होता लेकिन वो बड़ी प्यारी लग रही थी, है ना? मान गए ना? अब इंशाल्लाह बाकी सवालों के जवाब में नेक्स्ट, जिन्हें वैन से जाना है उनकी वैन के लिए मैं इंशाल्लाह जीनत की मसाइल अगली दफा बताऊंगी, फेशियल आईब्रोज और उसके अलावा जो इतने हैंडी किए क्योर और पैडी क्योर और मैनी क्योर, ये सब जो हम करवाते हैं, पैसे भी देते हैं और दर्द भी सहते हैं। परवरदिगार भक्त मोहम्मद और अहमद, आप लोग आए संडे के इस टाइम में, आपके आने को कबूल करें, अपनी सेहत सलामती और दुआओं की कबूलियत के लिए सलवार पढ़े मोहम्मद वाले।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله